अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाळुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम ब्रह्म मंगलम ब्रह्माकार मंगलम ब्रह्म मंगलम ब्रह्माकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम विष्णु मंगलम विष्णुकार मंगलम विष्णु मंगलम विष्णुकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम शिव मंगलम शिवाकार मंगलम शिव मंगलम शिवाकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम ब्रह्म मंगलम ब्रह्म ज्ञान मंगलम ब्रह्म मंगलम ब्रह्म ज्ञान मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम तत्त्वमंगलम तत्त्वज्ञानमंगलम तत्त्वमंगलम तत्त्वज्ञानमंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम गुरु मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम गुरु मंगलम गुरु ज्ञान मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम भक्ति मंगलम भगवान मंगलम भक्ति मंगलम भगवान मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम भक्त मंगलम भगवान मंगलम भक्त मंगलम भगवान मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम ओम मंगलम ओंकार मंगलम बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगज्जननी अम्बे माता की, सद्गुरुदेव भगवान की। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर पूज्य चरण महाराज श्री आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्तवृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय, आनंद के ये क्षण, परमानंद के ये क्षण नित्य प्रति परम पावन दिव्य भूमि स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम का ये सुंदर प्रांगण, जिसके अंतर्गत बैठकर हम लोग नित्य प्रति सत्संग सुधा वर्षा का प्रातःकाल अमृत बेला के सुंदर पावन काल में आनंद लेते हैं। महापुरुषों का, भगवान का हमारे ऊपर असीम कृपा आशीर्वाद, जिसकी वजह से हमको इस सुंदर सत्संग की प्राप्ति होती है। तो ऐसे सुंदर ये क्षण और ऐसा सुंदर ये संयोग हमारा और आपका कि हम अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य के ऊपर कुछ विचार कर सकें, चिंतन कर सकें। तो वर्तमान में हमारा जो प्रसंग चल रहा है, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद, भगवान की बाल चपल लीलाएं, कहने मात्र को चपल और कहने मात्र को बाल, लेकिन अध्यात्म की जो सागर की गहराई जिसको कहा जाता है, उस प्रकार की गहराई से संयोजित भगवान की ये सुंदर लीलाएं, जिसका हम लोग पिछले वर्षों से श्रवण कर रहे हैं और इस बार भी जो है ये प्रसंग चल रहा है। तो भगवान के सुंदर नटवर नागर रूप का हम लोग कल वर्णन कर चुके हैं, चिंतन उसको हृदय में बैठाए रखें। 8 वर्ष के भगवान मुरली मनोहर बिल्कुल चित्र को अपने अंदर से बिगाड़े नहीं, कैलेंडर के भगवान को नहीं चुकाए, है ना। 25 वर्षीय भगवान नहीं है, भगवान कितने बड़े हैं। हाँ, वरह पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद वासा कनक कपसम वैजंतीम चमालम, रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपदरमणम प्रविशद गीत कीर्ति। ऐसा जो भगवान का सुंदर बाल रूप है मुरली मनोहर, अपने ग्वाल वृंदों के संग महाराज जिस समय अपनी मधुर वाणी को छेड़ते हैं, बांसुरी के तान को, उस समय गोपिकाएं अनायास ही महाराज भगवान की उस मुरली का वर्णन करने लगती हैं। और कल हम लोगों ने जो है इस श्लोक के माध्यम से श्रवण किया, अक्षण वताम फलमिदम न परम विदामा सख्या पशुनन विवेश तयोर वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेण जुष्टम येरवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। इन आंखों की, आंख वालों के इन आंखों की जो है इसी में ही धन्यता है कि उनको जो है भगवान के सुंदर मनोहर रूप के वृंदावन धाम में जो अपने ग्वाल वालों के संग, गायों के संग, जब वो इस प्रकार का नटवर रूप धारण करके, नट का एक वेश धारण करके महाराज इस वृंदावन में विचरण करते हैं, जिसने उस रूप माधुरी को महाराज देखा है, वही इस संसार में धन्य भाग्य है। अन्यथा उसकी आंखों के होने ना होने का कोई फायदा नहीं है। इतना ही लाभ है कि हम अपनी आंखों से भगवान के सुंदर जो है स्वरूप का क्या कर सकें, बाहर भी, बाहर के चर्म चक्षुओं से भी और अंतःकरण के मन के चक्षुओं से भी भगवान का अपने अंदर क्या करते रहना चाहिए। ऐसा दर्शन जिसको कहते हैं नटवर बपू, कहते हैं नाट्यशाला के, नाट्य मंच के जिस प्रकार से जो है नाटक करने वाले जो कलाकार हैं, उस प्रकार से भगवान ने अपने आप को स्वयं ही और कुछ उनके ग्वाल वालों ने भगवान को क्या कर रखा है, सजा रखा है ना। जैसे आप अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, है ना, देखा आपने, है कुटुंबी होने के नाते, गृहस्थ होने के नाते आप इन सब चीजों को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन ये सब हाड़ मास का प्रेम है। हमारा जो प्रेम है वो कैसा है, आपको अपने हाड़ मास के पारिवारिक जो है रिश्ते नातों के कारण आपको अपने बालकों को, अपने बच्चों को सजाने में मजा आता है, आनंद आता है, लेकिन यहां पर जो है यहां अलौकिक, वहां पर शरीर का कोई भाव नहीं है हमारा, यहां पर शरीर से ऊपर उठे सौंदर्य का भाव है, जिसको आध्यात्मिक सौंदर्य कहते हैं। शारीरिक सौंदर्य एक सीमा पे जाके क्या हो जाता है, समाप्त तो हो जाता है, लेकिन अलौकिक प्रेम जो आध्यात्मिक प्रेम है वो घटने की बजाय क्या होता है, बढ़ता है ना, उल्टा क्रम है। सांसारिक प्रेम सनय सनय कम होता जाता है और आध्यात्मिक प्रेम ज्यों ज्यों ऊंचाइयों पर पहुंचता जाता है महाराज, और है ना उसकी सीमा रेखा सारी पार हो जाती महाराज। तो इस प्रकार से गोपिकाएं जो है एक दूसरे को भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन और उस बांसुरी के जादू का वर्णन, क्योंकि ये बांसुरी कैसी है, जड़ को चैतन्य कर देने वाली और चैतन्य को जड़ कर देने वाली है ना, क्या कर देती है, हाँ ये विशेषता है महाराज इस बांसुरी की, जो भगवान की बांसुरी है ये साधारण नहीं है। साधारण सा संगीतकार जो है जो बांसुरी बजाता है बांसुरी वादक, वो महाराज आपके मन को जो है मनोरंजन देता है, क्या देता है, मनोरंजन देता है महाराज। लेकिन ये जो भगवान की बांसुरी है ये किसी जो है कलाकार की बांसुरी नहीं है, ये बंसी जो है महाराज हमको अपने शरीर से ही क्या कर देती है, हाँ अलग कर देती है ना, क्योंकि साधारण जो संगीत का बांसुरी वादक है वो महाराज हमारा मनोरंजन करता है, आप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, ये प्रसन्नता देने के लिए नहीं है, ये तो महाराज जीवन मुक्त करने वाली बांसुरी है ना, जो हमको जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति का क्या देती है, आनंद देती है। जरा देखिए क्या गतियां हैं महाराज, है ना, भगवान की क्या स्थितियां वर्णन की है एक दूसरे से गोपिकाओं ने। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इस प्रकार से भगवान का जो है उन्होंने धन्य भाग्य माना है कि भगवान की प्रेम भरी तिरछी चितवन को और भगवान के गायों के झुंड और अगल बगल गोप ग्वाल वृंदों के संग घिरे हुए ऐसे सुंदर नटवर नागर के दर्शन जिसने किए उसी की आंख धन्य है, अन्यथा तो आंख होने का भी कोई फायदा नहीं है। उसके बाद कहते हैं चूत प्रवाल वरहस्त वरहस्तव कोत्पलाब्जम मालानुप्रत्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरौ क्वाच गायमानौ। कहते हैं अरे सखी, एक दूसरे से सखियां वर्णन कर रही हैं भगवान का कि जो नई नई प्रवाल यानी जो आम की नई नई कोपले होती हैं, लाल लाल कोपले महाराज बिल्कुल है सुंदर, कहते हैं और भगवान ने धारण कर रखा है मोर का पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल, कुमुद की मालाएं, ये सब भगवान के आभूषण थे महाराज वृंदावन में, है ना। और आप लोगों को कौन से आभूषण पसंद है, देखो भगवान में और अपने में थोड़ा सा देख लो, आपके पास जब धन की वृद्धि होती है तो आपको कौन से आभूषण भाते हैं, फूलों के या सोने के, हैं? तो जरा एक बात बताओ, तुम्हारा मन चैतन्य की ओर जा रहा है या जड़ की ओर, हैं? देखो जो प्रकृति की दी हुई धरोहर है भगवान उससे अपने आप को क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं महाराज। और हम ज्यों ज्यों संसार में फंसते जाते हैं तो हमारे अंदर जड़ता की चीजों के प्रति क्या हो जाती है, रुचि होने लगती है। ध्यान दीजिएगा हमारा मन किधर जा रहा है, तो भगवान ने अपने आप को कुमुद की मालाओं हैं, सांवरे शरीर पर महाराज पीताम्बर लहरा रहा है, हैं? नटवर कहते हैं जो ये सुंदर पशुपाल गोष्ठम छोटे छोटे ग्वाल बालों से घिरे हुए महाराज सांवले शरीर पर पीतांबर लहरा रहा है, बलराम बलदाऊ के हैं गोरे शरीर जो है नीलांबर और ऐसा ग्वाल बालों का जो झुंड है उसके मध्य में महाराज बैठे हुए भगवान जो है नटवर नागर जिनको हम लोग कहते हैं और महाराज सुंदर बांसुरी की क्या छेड़ रहे हैं, तान छेड़ रहे हैं, क्योंकि बांसुरी भगवान की, क्यों भगवान कितने बड़े हैं, 8 वर्ष के हैं, तो भगवान की बांसुरी जैसे आजकल संगीतकारों की आप बड़ी बड़ी बांसुरी नहीं है, कैसी बांसुरी है, बहुत छोटी सी बांसुरी है महाराज, एक साधारण से बांस को तोड़ लिया और जंगल में ही भगवान ने उस बांसुरी का अपने हाथ से ही क्या कर लिया, किसी कारीगर ने बना के नहीं दिया महाराज कि भगवान को किसी संगीत के कॉम्पिटिशन में भाग लेना है ना कि वहां पर उनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा बांसुरी बजाने का, ऐसा वहां कोई कार्य नहीं है, वहां तो महाराज हमारे आपके चित्त के हरण करने की बात है ना, जहां हमारा चित्त क्या हो जाए, हरण हो जाए महाराज, हमारे चित्त जो रात दिन संसार में लगा हुआ है और महाराज भगवान ने अपने इस अभिनय के द्वारा उस सच जो वृंदावन का सजा हुआ रंगमंच था, देखिए कैसी सुंदर प्रकृति की बिखरी हुई शोभा, चारों तरफ हरी हरी घास, सुंदर सुंदर फूलों के वृक्ष और महाराज बड़े बड़े फलों के वृक्ष, चारों तरफ महाराज जल के कुंड उनमें खिले हुए कमल, ऐसा महाराज भगवान का अपना ही सजाया हुआ नाट्यशाला का सुंदर दृश्य जरा कल्पना कीजिए। आज हमने उस वृंदावन को क्या कर दिया, जाके देखो है कुछ नजर आता है, कुछ भी नहीं महाराज, सब समाप्त कर दिया। तो ऐसे सुंदर सजी हुई जो प्रकृति के द्वारा सजाई गई नाट्यशाला थी महाराज, उसको जो है भगवान उपयोग कर रहे हैं किसके लिए, अपने अभिनय के लिए। सखी कहती हैं देखो इस समय कैसी शोभा होती है कि ऐसे महाराज रंगे यथा नटवरौ क्वाचा गाय मानो, और दोनों महाराज ऐसा वेश धारण करके उस सभा मंडल में अपने छोटे छोटे ग्वाल वालों और गऊओं के संग महाराज भगवान जो है विराजमान है। दूसरी तरफ महाराज उस मुरली की विशेषता बताती हैं कि देखो कैसी विचित्र, जो सांसारिक प्रेम है महाराज वहां पर स्त्री पुरुष के प्रेम की बात आती है, लेकिन जहां पर महाराज सब सीमाएं समाप्त हो जाती हैं वहां पर महाराज न जड़ रह जाता है न चेतन रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। और यहां पर जो है स्वयं गोपिकाएं भी उस वेणु को किस रूप में देख रही हैं, स्वयं जरा देखिए सुखदेव जी कहते हैं, गोप्या किमाचरदयम् कुशलम् इष्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम् भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो ह्रस्वत्वचोश्रुमुचस्तरवो यथार्या। कहते हैं गोपिकाएं कहती हैं अरे गोप सखियों जरा देखो ये जो वेणु है, कहते हैं कुशला इष्म वेणु, ये वेणु जो है तो पुरुष जाति का, क्योंकि नाम के अनुसार शब्द के अनुसार वेणु शब्द जो है वो पुरलिंग है, तो वेणु जो है बांस जो पुरलिंग कहा जाता है, यद्यपि हम वृक्ष में या जड़ चीज में कुछ पता नहीं लगा सकते, और जड़ चीज क्या चैतन्य में भी अगर आपके सामने जो है दो चार पक्षी बैठे हों या दो चार मछली तैर रही हों है ना, तो आपसे पूछा जाए बताओ इसमें नर कौन है मादा कौन है, आप बता सकते हो, पता चलता है कुछ है? जैसे एक बार जो है अकबर ने बीरबल से पूछा, बोले तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो, तालाब के किनारे दोनों घूम रहे थे, बोले बताओ इन मछलियों में नर कौन सी है मादा कौन सी है ना। अब बीरबल बेचारा लेकिन था तो बड़ा बुद्धिमान, बोले महाराज जो तैर रहे हैं वो नर है, जो तैर रही है वो मादा। अभी आप पता लगाओ कि इसमें कौन तैर रहे हैं और कौन तैर रही है ना, तो ऐसा सुंदर महाराज उसका बुद्धि का स्वरूप था। तो वैसे ही जो है वेणु की जाति पता करना आसान नहीं है कि ये पुरुष है या जो है नर है, लेकिन शब्द के अनुसार जो उसको नाम दिया गया वेणु या महाराज बांस जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसके अनुसार जो है शब्द के अनुसार जो है वो पुरलिंग है। कहते हैं यद्यपि ये है तो पुरुष जाति का, सखियां कहती ना, क्योंकि स्त्रियों के अंदर एक स्वभाव है कि जब उनके प्रेम को कोई दूसरा बांटता है तो स्त्रियों के अंदर एक ताप उत्पन्न होता है ना, वो सहन नहीं होता उनसे, ये स्वभाव है। हर पुरुष के अपने स्वभाव हैं, स्त्रियों के अपने स्वभाव, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये स्वभाव है हमारा आपका क्या है, स्वभाव है ना। तो अहंकार करना, दूसरे को अपने पैरों के नीचे रखना, दूसरे को दबा, ये पुरुष के स्वभाव है हमारा है ना, तो ये स्वभाव है। तो महाराज स्त्रियों का ये स्वभाव है कि अपने प्रेम को दूसरे को बांटते नहीं देख सकती हूं, तो इसलिए एक सखी दूसरे से कहती है कि देखो है तो ये पुरुष जाति का, लेकिन ना जाने इसने कौन सा महाराज कार्य किया है, कौन सी ऐसी विशेष साधना की है या ये भजन कर चुका है। कहते हैं किमाचर दया, कहते हैं किमाचर, कैसा कौन सा इसने शुभ कार्य किया है कि जो हमारी संपत्ति को ये चुरा रहा है हमारे सामने है ना, क्योंकि दामोदर अधर, दामोदर अधर सुधाम अपि, कहते हैं ये भगवान के सुंदर अधरों के अमृत को जो हमारा अधिकार है उसको हमारे ही सामने छीनकर, और भगवान अपने अधरों का अमृत इसके जो है जो छिद्र हैं उनमें क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, जिसके कारण इसकी जो है ध्वनि चारों तरफ वो अमृत की ध्वनि जो है क्या हो रही, प्रस्फुटित हो रही है महाराज। तो कहते हैं ऐसा जब ये हृदनियों ने कहते हैं हृदनिया, हृदनिया मतलब जो छोटे छोटे जल के क्या हैं कुंड हैं, कहते हैं इस वेणु रस जो ये वेणु तैयार हुआ यानी जो बांस तैयार हुआ उस बांस को जब सींचा हृदनियों ने यानी जो छोटे छोटे जल के कुंड हैं तालाब हैं उन्होंने सिंचित किया और वो जो कुंड है वृंदावन के इस समय जब इस बांस के छोटे से टुकड़े को भगवान के अधरों पर रखा हुआ देख रही हैं, कहते हैं वो हृदनिया अपने आप को कहते हैं क्या कहती हैं अपने आप को उन कमलों की शोभा जो उनके अंदर जो दिखाई दे रही है उसको प्रदर्शित करके ये जो दिखाई दे रहा कमलों का झुंड वो हृदनिया ये बता रही हैं। गोपियां कहती हैं कि ये कमल की जो खिली हुई पंक्तियां बता रही ये अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं किसके द्वारा उन खिले हुए कमलों के द्वारा। अरे भाई जैसे आपको जब बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हो तो आपके दांतों के कमल क्या हो जाते हैं खिल जाते हैं कि नहीं खिल जाते हैं। हम लोग कहते हैं मजाक में कहते हैं कि हाँ जब किसी को प्रसन्न करना हो तो उससे सीधे कह दो कि कोलगेट का ऐड दीजिए, क्या दीजिए है ना, कोलगेट का जब ऐड देते हैं तो दांत बाहर आ जाते। अब हृदनियों के पास प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए कोई मुख तो है नहीं महाराज, तो वो अपने दांतों को कैसे बाहर प्रसन्नता के लिए दिखाएं, तो उनके दांत क्या हैं कमल ही उनके दांत हैं महाराज, और उन कमलों को खिलाकर वो हृदनियां उस वेणु का स्वागत कर रही हैं कि तुम धन्य हो कि जिसको है जो अधर पे रखी हुई मुरली है उसके बांस को उनके झुरमटों को हमारे जल के द्वारा सींचा गया, हम धन्य भाग्य हैं। और कहते हैं उससे भी आगे जो पेड़ वहां पर खड़े हुए हैं महाराज भगवान के सुंदर जो है इस अधर पे धरी हुई मुरली की तान को सुन रहे हैं, कहते हैं मुष्तरवो यथार्या, उनमें से महाराज झर रहा है जल, उन वृक्षों के अंदर से क्या गिर रहा है जरा देखिए मुरली है ना, ये मुरली वो मुरली है महाराज जो आपने कल्पनाओं में सुनी है कि तानसेन जब जो है राग गाते थे तो दिए भी क्या हो जाते थे जलने लगते थे, और वही स्थिति महाराज यहाँ पर है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक सखी दूसरी सखी से कह रही है महाराज जरा मुरली देखिए मुरली, ये है वेदांत जहां पर जड़ चेतन हो जाए और चेतन जो है जड़ हो जाए महाराज। तालाब भी मुस्कुरा रहे हैं किसके द्वारा कमलों की शोभा बढ़ाकर महाराज वो अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, और महाराज वो पेड़ ये कह रहे हैं ये हमारे परिवार का सदस्य है, ये वेणु जो है किसका है हमारे परिवार का, लकड़ी की जाति परिवार है मेरा, और हमारा परिवार कितना धन्य है कि महाराज आज हमारे परिवार का एक सदस्य परम ब्रह्म पुरुषोत्तम के अधरों पर लगा हुआ। कहते हैं ऐसा कहकर कहते हैं क्या मुष्तरवो यथार्या, उनके भी क्या निकल रहे हैं ह्रस्वस्त्वचोश्रु, आनंद की अश्रुधार बह रही किनकी तरवों की पेड़ों की महाराज, पेड़ भी क्या बहा रहे हैं, ये है भगवान की मुरली महाराज। साधारण की तो बात क्या की जाए, कौन स्वयं सखियां जो हैं एक दूसरे से महाराज वर्णन कर रही हैं भगवान की मुरली तरुओं को भी महाराज प्रेमाश्रु बहाने के लिए। यदि आप भी कभी प्रेम करके देखेंगे तो ऐसा आपको भी अनुभव होगा, ये वेदांत की पराकाष्ठा है महाराज, साधारण चीज नहीं है। वेदांत का मतलब ही यही है कि अपने अलावा अपने सत्ता के अलावा जब दूसरी कोई सत्ता आपको दिखाई ना दे, ये परम ब्रह्म सत्ता है महाराज। अन्यथा तो एक जड़ वस्तु के रोने की तो कोई बात भी नहीं सोच सकता, तालाब के हास्य की कोई बात ही नहीं सोच सकता महाराज कि तालाब भी हंस सकता है। कल्पना कर सकते हैं आप, कभी सुना है आपने किसी ग्रंथ में या विश्व के किसी साहित्य में कहीं पर ऐसा वर्णन किया गया हो कि तालाब भी हंसता है, ये है आपकी धरोहर महाराज श्रीमद् भागवत। साधारण नहीं है, असाधारण है महाराज, अगर आप इसकी गहराई में उतर सकते हैं तो, अन्यथा तो वेणु गीत है महाराज, साधारणता साधारण नहीं है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम्, उसके बाद गोपिकाएं कहती हैं जरा देखो कि इस समय स्थिति क्या है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज जलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्तमयोर नित्यम प्रेक्षादृशान वपतरान्य समस्त सत्वम। कहती है सखी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि वृंदावन सखी वो वितनोत कीर्ति। इस समय जो है हमारे वृंदावन की कीर्ति वैकुंठ लोक तक पहुंच चुकी है हमारा, क्योंकि पृथ्वी के इस तीर्थ ने जो है हमारी जो है कीर्ति का विस्तार कर दिया है चारों तरफ। क्यों? क्योंकि ये जो भूमि है इस समय क्या है, कहते हैं देवकी शुद्ध पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। यहां पर थोड़ी सी जो है गलती की गई इस श्लोक में, क्योंकि यद्यपि जो है इसका जो अर्थ किया जो है परम जो है पूजनीय स्वामी अखंडानंद जी ने, तो उन्होंने तो सही कर दिया, यहां पर दिया देवकी सुत। भगवान वृंदावन में देवकी सुत नहीं है, यशोदानंदन है ना, क्योंकि देवकी सुत तो महाराज जब कंस को मार दिया और जेल से छुड़ाया तब पता चला कि ये यशोदा और नंद के बालक नहीं बल्कि किसके बालक हैं। हाँ, उस समय महाराज वज्रपात हो गया किसके ऊपर, हाँ वज्रपात हो गया किसके ऊपर, यशोदा और नंद के ऊपर, जिनको पता चला ये हमारा पुत्र नहीं है महाराज, है ना। तो भगवान ने समय पर अपनी लीला को छुपाया भी और प्रकट भी किया, क्योंकि वो उसको किसी से मोह नहीं है। यहां पर जो है देवकी शुद्ध दे दिया, क्योंकि छंद की दृष्टि से हो सकता है वहां पर वो शब्द ना आ पा रहा हो, इसलिए देवकी शुद्ध प्रयोग कर दिया, लेकिन है यशोदानंदन महाराज। तो कहते हैं इसलिए ये कीर्ति वैकुंठ तक महाराज पृथ्वी से जो है वैकुंठ तक फैल रही है, क्योंकि इस समय ये धरती जो है देवकी शुद्ध पदाम्बुज जो भगवान नटवर नागर यशोदानंदन के सुंदर चरण हैं उनके चरण चिन्हों से ये क्या हो रही है, सुशोभित तो हो रही है। और उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता यह है गोविंद वेणु मनु, जो बड़े बड़े मननशील मुनियों के भी चित्त का हरण कर लेती है हमारा। ऐसी जो है बंसरी की धुन इस वृंदावन में हर समय दिन के समय क्या होती रहती, चारों तरफ महाराज गूंजती रहती है, और उसका परिणाम क्या है, मत्त मयूर नृत्यम, है ना। मोर के पंख हैं कैसे रहते हैं, बिल्कुल सीधे महाराज, जब मोर अपनी साम्यावस्था में होता बिल्कुल साधारण अपने परों को, लेकिन जब बादल घुमड़ने लगते हैं महाराज, बारिश आने का समय होता है या कोई विशेष इस प्रकार की ऋतु का आगमन या कुछ विशेष कार्य होता, तब वो मयूर जो है क्या करता है, नृत्य करता है। कहते हैं जिस समय भगवान अपनी मुरली को बजाते हैं उस समय अनायास ही वो मयूर जो है वो क्या करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, वो अपने साम्यावस्था को छोड़ देते हैं महाराज और भगवान की मुरली की तान पर वो नृत्य करने लगते हैं। लेकिन उनको नृत्य करते और भगवान को मुरली, जरा कल्पना कीजिए महाराज, एक 8 वर्ष का छोटा सा बालक वृंदावन की सुंदर सी झांकी में मुरली बजा रहा है और उनके सामने बहुत से मोर क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं महाराज। क्या कभी आपने जीवन में ऐसा आनंद लिया है, क्यों जी है, मिलता है कहीं, ये है महाराज स्वर्ग, इसको कहते हैं स्वर्ग का सुख, है ना। भगवान जो है ऐसा आनंद ले रहे हैं और बोले गोपिकाएं कहती हैं सखियों मयूर तो नृत्य करने लगा, जो स्वाभाविक अवस्था थी अपने परों को सीधा रखने की वो छोड़कर महाराज नृत्य करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, प्रेक्षादि सावन सान वपरतयान्य समस्त सत्वम, जो पर्वतों के ऊपर उड़ने वाले जो पक्षी थे है ना, वो उड़ना भूल गए महाराज और वो पर्वतों की चोटियों पर बैठकर जड़ की तरह जैसे पत्थर की मूर्ति होती है एक टक उस दृश्य को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं महाराज। ये है भगवान की मुरली, जड़ को चैतन्य बना देती है और चैतन्य को जड़ बना देती है। जो उड़ने वाले पक्षी थे वो कैसे हो गए, मूर्तिवत होकर महाराज भगवान की मुरली का क्या ले रहे हैं, आनंद ले रहे महाराज, रसपान कर रहे हैं और महाराज मोरों को उस मुरली की तान पर नाचते हुए एक टक देख रहे हैं। इस प्रकार से जो है कीर्ति का विस्तार हो रहा है, वृंदावन की कीर्ति जो है वैकुंठ लोक तक जा रही है। और दूसरी तरफ महाराज एक दृश्य तो ये है और दूसरी तरफ मुरली का जरा जो है प्रभाव देखिए क्या हो रहा है। धन्या इष्म मूढ़मतयोपि हरिण्येता या नंदनंदमुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारः पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकहि। कहते हैं जिस समय ऐसे भगवान नंद नंदन जो है वंशी की तान छीणते हैं, उस समय कुछ क्या होता है, कहते हैं जो हिरण हरिनिया हैं, हिरण जो मादा जाति जिसको कहते हैं, हिरनिया जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो महाराज अपने जो बड़े बड़े नेत्र होते हैं, हिरण के नेत्रों को क्या माना जाता है। अच्छा, आप लोग अपनी आंखों के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा आपकी आंखों के बारे में बता दूं। जब हम बचपन छोटा हमारा बाल्यावस्था होती है, उस समय आपकी जो है आंखें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, और ज्यों ज्यों आपकी आयु बढ़ती जाती है त्यों त्यों आपकी आंखें, हाँ कभी ध्यान देना, बड़ी नहीं होती, आंखें कैसी होती जाती, छोटी हो जाती महाराज। और वृद्धावस्था में तो हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिरणियों की जो बड़ी बड़ी आंखें हैं महाराज, जब भगवान के सुंदर इस नटवर बपू को वो देखती हैं, तो महाराज अपने आप को धन्य अनुभव करती हुई अपने बड़े बड़े कमल नेत्र, उन हिरणियों के जो कमल नेत्र हैं, उनको जो है भगवान के चरणों में क्या कर देती हैं, न्योछावर कर देती हैं, और संग में महाराज उस मुरली की धुन को सुनाने के लिए अपने पतियों को यानी हिरणों को अपने संग भगवान के कहां ले आती हैं, नजदीक ले आती हैं, है ना, कहते तुम भी सुनो चल के, है ना। तो वो हिरण और वो हिरनिया जो हैं भगवान को एक टक अपलक महाराज देख रहे हैं, और कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित, सखियां कह रही हैं एक दूसरे की को कि वास्तविकता में धन्य है महाराज। क्यों? क्योंकि जिस समय भगवान को वो इस प्रकार से अपने चरण उनके चरण कमलों में अपने ये नेत्र कमल अर्पित करती हैं, तो उस समय भगवान उनके दिए हुए इस उपहार को क्या करते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान भी उस समय बांसुरी बजाते हुए, आपने देखा कलाकार जब बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है गायन वादन में, तो उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती महाराज, और फिर वो धीरे से आंख खोलता है, तो भगवान भी जो है उन हिरणियों के द्वारा दिए हुए उपहार को जो उन्होंने भगवान के चरण कमलों में अपने नेत्र कमल अर्पित किए थे, भगवान भी तिरछी चितवन के द्वारा उसको क्या करते हैं, भगवान उसका स्वागत करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। जब भगवान उनको अपनी तिरछी चितवन से महाराज देखते हैं, तो महाराज वो धन्य हो जाते हैं, और उस समय गोपिकाएं कहती हैं कि देखो एक हम भाग्यहीन हैं, हमसे धन्य हैं ये हिरणियां जो महाराज भगवान की कृपा को क्या कर रही हैं, प्राप्त कर रही हैं, और हम तो मनुष्य होते हुए भी, क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदियों का क्या लगा हुआ, हम तो जी भर के अपने कृष्ण को देख भी नहीं सकते महाराज। ये देखो अंतर है महाराज, जो स्वतंत्रता है, हम लोग कहते हैं ना खाली मनुष्य योनि, यहां तो महाराज क्या बांसुरी, क्या पेड़, क्या पशु, क्या पक्षी महाराज सबकी, एक सखी दूसरे से कहती है कि ये तो महाराज हिरणों की बात है, लेकिन यहां तो दूसरी है, भगवान तो भगवान का तो काम ही यही था छेड़ना, आते ही महाराज कंस को छेड़ दिया, जिसको मनाया उसको छेड़ दिया, क्योंकि अभयम उसके अंदर कोई भय नहीं है, भय हमको आपको होता है महाराज कि क्यों छेड़ दिया भगवान ने कंस को, अच्छा खासा कंस देवकी को लेके जा रहा था और आकाशवाणी हो गई कि इसका आठवां गर्भ तुम्हारी जो है मृत्यु का कारण बनेगा, छेड़ दिया महाराज कंस को, क्यों भाई आपकी है हिम्मत किसी को छेड़ने की, क्यों, क्योंकि हम भयभीत हैं, भय से युक्त व्यक्ति कभी जीवन का आनंद नहीं ले सकता महाराज। और भगवान ने देखो वो मुरली की तान, साधारण की तो बात, ये पशु पक्षी तो महाराज शुद्ध हृदय हैं, इनके अंदर कहीं पर कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन भगवान ने किसको छेड़ा, कहते हैं देवताओं की धर्म पत्नियों को छेड़ दिया, किसके द्वारा, अपने नटवर स्वरूप और मुरली की मधुर तान से। सखी कहती है कृष्णम निरीक्ष वनितोस वनितोत्सव स्वरूप शीलम श्रुत्वा च तत्क्वणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतया स्मरन्नुसारा भ्रंशत प्रसून कवरा मुहुर् विनिव्या। कहते हैं जिस समय स्वर्ग से स्वर्ग के विमानों पर बैठी हुई महाराज वो देवियां आकाश मंडल से गुजरती हुई देव्यो विमान गतया, विमान में बैठी हुई वो देवताओं की धर्मपत्नियां देवियां जिस समय महाराज वृंदावन की इस परम शोभा को देखती हैं और नीचे जो है उनको उस वृंदावन के विशाल रंगमंच पर ऐसे दो नट महाराज बांसुरी वादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और उनकी शोभा को देखकर कहते हैं उनकी स्थिति ये हो जाती है कि वो बेशुद्ध हो जाती हैं। कहते हैं कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम, जब उनकी बांसुरी वादन को और उनके महाराज इस स्वरूप का नटवर बपू का दर्शन करती हैं, कहते हैं स्मरण अनुसारा उनका संपूर्ण जो है भाव जो है पूर्णतया भगवान में स्थित हो जाने के कारण जो बिल्कुल भी संभव नहीं, क्योंकि देवता लोग जो है भोग प्रधान माने गए। क्या माने गए? हाँ, सजना सजाना सवरना यही देवताओं का क्या है। अरे यही देखकर तो माता सती भ्रमित हो गई थी कि देवांगनाओं को जब सजा हुआ महाराज देखा, क्योंकि भोग प्रधान है स्वर्ग है, तो भोग प्रधान स्वर्ग की देवियां जो केवल सजना सजाना ही जानती थी महाराज, भगवान यही तो छेड़ना चाहते थे। सखी कहती है दूसरी सखी से कि जिस समय भगवान के ऐसे स्वरूप और मन मोहनी है मुनिजन मोहनी मुरली, जड़ को चैतन्य चैतन्य को जड़ कर देने वाली मुरली की तान जब उनके कानों में आकाश मंडल से विमानों में गुजरते हुए पड़ती थी महाराज, उनके गुथे हुए बाल खुल जाते थे बेशुद्ध हो जाने के कारण। उनको अपने वस्त्रों का भी होश नहीं रहता था कि कहां वस्त्र है नहीं है, उनको तो केवल क्या सुनाई देता था, आंखें बंद हो जाती थी और महाराज उनको केवल और केवल भगवान की रूप रस माधुरी हृदय में और कानों में देवियों के क्या बज रहा है, बांसुरी की सुंदर तान। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ये भगवान की वेणु है। जरा सोचिए जो देवांगनाओं को भी महाराज विचलित कर देने वाली है ना, जिन्होंने केवल स्वर्ग के सुखों के लिए ही तपस्या की थी महाराज, उनके लिए स्वर्ग के सुख थे, जहां पर भगवान का कोई नाम ही नहीं है, केवल सुख ही सुख भोग ही भोगों की बातें हैं, लेकिन भगवान की मुरली उनको भी छेड़ देती है, उनको भी अपनी ओर क्या कर लेती मोड़ देती महाराज। और जो वेणु गीत का सबसे सुंदर श्लोक मुझे लगता है महाराज, और जरा इस दृश्य को देखिए जरा क्या जोरदार सुखदेव जी ने और सखियों ने एक दूसरे से कहा है, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुत्तभित कर्ण पुटै पिबन्त्या सावा स्तुनतन पनपयः कवला इष्मतस्थु गोविंदमात्मनिद्रसाश्रु कलाश प्रसन्त्या। कहते हैं जिस समय भगवान अपनी इस मुरली की तान को अपने नटवर बपू को धारण करके छेड़ते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित एक सखी दूसरी से सखी से कहती है, अरे देखो सखी इन गायों को देखो। उस समय गाय जो है अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही, बछड़ा या बछिया वो दुग्धपान कर रहा है। कहते हैं गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम, कहते हैं जिस समय वो गाय भगवान के सुंदर वेणु गीत का स्पर्श करती है, एकाएक उसके कान यूं से यूं खड़े हो जाते। कैसे बन जाते? बोले अपने कानों का दोना बना देती, पीयूष मुत भित्त कर्ण पुटे पिबंत्या, वो अपने कानों को दोना बनाकर महाराज जिस प्रकार से दोने में लेके हम प्रसाद को पीते हैं, उसी प्रकार से वो गाय भगवान की वेणु गीत को पीना प्रारंभ कर देती है। और इसका परिणाम ये होता है कि वो भगवान की सुंदर छवि को समेट के अपने हृदय में ले जाती है और भगवान को अपने दोनों हाथों से वो गाय क्या कर लेती है, लपेट लेती है महाराज, आलिंगन कर लेती है। बोले ठीक यही स्थिति किसकी है? बोले उस सावा यानी उस बच्चे की है महाराज, जो भगवान अपनी माता के सुंदर दुग्ध का पान कर रहा था, लेकिन एकाएक उस सुंदर से छोटे से बछड़े बछिया के कान में वो शब्द गए और महाराज उसका दुग्ध पान वहीं का वहीं रुक गया, ना वो दूध को घुटकता है और ना निकालता। दूध कहां पे रुका हुआ है? गले के मध्य में। और महाराज वो दोनों कानों से क्या सुन रहा है? भगवान की मुरली, और उसके हृदय में भगवान की सुंदर छवि उतरी हुई है और उसने भी भगवान को दोनों हाथों से क्या किया हुआ, अपने हृदय में आलिंगन किया हुआ है।
और उसके बाद दोनों माँ और बेटे बेटी जो भी है महाराज बछड़ा या बछिया दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की क्या बह रही है, ये है महाराज भक्ति का चरम, ये है ज्ञान का चरम। जहां पर गाय को भगवान से क्या चाहिए और भगवान को गाय से क्या चाहिए, ये निष्काम स्थिति है महाराज। जहां पर कुछ नहीं चाहिए केवल एक दूसरे के प्रेम के पागल हैं, क्या है वहां पर सोना चांदी हीरा मोती, साधारण से महाराज कनेर के फूल, साधारण से जल में खिलने वाले कमल के फूल महाराज, और उन्हीं का भगवान ने श्रृंगार कर रखा है, और उस सुंदर श्रृंगार परम सौंदर्य को महाराज उस गाय ने उस बछड़े बछिया ने अपने हृदय में आलिंगन बद्ध कर रखा भगवान को, और दोनों आंखों से माँ और बच्चे दोनों महाराज नेत्रों से झरझर झरझर क्या बह रहा है। जरा कल्पना कीजिए महाराज, क्या हमारे संग भी कभी ऐसा हुआ है। हम लोग कहते हैं हम भगवान को प्रेम करते हैं, है कोई प्रेम हुआ कभी ऐसा, हम तो जब रोए तो दुख में रोए, सांसारिक दुख हुआ तब रोए या कोई भौतिक लाभ प्राप्त हुआ तब रोए। जब बड़ी प्रसन्नता की खबर सुनते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं महाराज, आंखों से आंसू आ जाते हैं, है ना। किसी की बहुत वर्षों बाद पुत्र की प्राप्ति हो पौत्र की प्राप्ति हो आपकी आंखों में क्या आ जाते हैं, ये जो हमारा जो मोहमय संसार है इसकी प्राप्ति में हमको क्या हो जाता है। क्यों भाई, गाय के भगवान श्री कृष्ण क्या लगते हैं रिश्ते में, है कोई रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं महाराज, केवल एक ही रिश्ता है प्रेम का रिश्ता महाराज। ऐसा अनुपम सौंदर्य भगवान ने वहां पर बिखेरा हुआ है, ये जो दृश्य है महाराज जरा देखिए। सखियां कहती हैं कि अरे ये तो हमारे घर की चीजें हैं गाय बछड़े और बछिया, लेकिन जरा इन वृंदावन के पक्षियों को तो देखो क्या कहते हैं। प्रायो बताम बबिहगा मुनियो बनेश्मिन कृष्णे चितम तदुदितम कलवेणु गीतम आरोह्य ये द्रुम भुजान रुचिर प्रवालान श्रणवंत मिलित दृशो विगतान्यवाचः। कहते हैं अरे सखी इन गायों को तो छोड़ो, इन जरा पक्षियों की ओर देखो। प्रायो बताम बबिहगा, जो दिन रात जो है विचरण करने वाले पक्षी हैं, जब भगवान की सुंदर मुरली की ध्वनि इनके कानों में महाराज पड़ती है तो ये अपना सब कुछ भूल जाते हैं, और प्रायः तो ये ज्यादातर कौन है, प्रायो बताम बेगा मुनियो बनेश्मिन, ये जन्म जन्मांतरों के वो तपस्वी हैं जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु जब आप लीला करने आना तो हमको भी कोई ना कोई रूप में हमको शामिल कर लेना, और भगवान ने उन ऋषि मुनियों को क्या बना दिया, पक्षी बना दिया महाराज। क्या बने घूम रहे हैं, पक्षी बन के महाराज डालों डालों पर बैठकर भगवान की रूप रस माधुरी का पान करते हैं, और कानों से भगवान की मनोहर मुरली की तान का महाराज आनंद लेते हैं। इस प्रकार से उनकी तपस्या चल रही है। कहते हैं ज्यादातर पक्षी तो महाराज इनको पक्षी कहना ही भूल है, वास्तविकता में तो ये हमारे ऋषि और मुनि है महाराज, जो सुंदर सुंदर हैं, जिनमें जो है कोपलें लगी हुई महाराज। कृष्णे चितम तदुदितम कल वेणु गीतम, कहते हैं ऐसे आरोही है ये द्विभुजान रुचिर प्रवालान, सुंदर सुंदर महाराज प्रवालों से कोपलों से खिले हुए जो वृक्ष हैं इसमें कैसे बैठे हैं। श्रणवंत मिलित दृशो, कहते हैं सुन रहे हैं उन्मिलित खुले हुए नेत्र, अमिलित माने जो नेत्र बंद है महाराज, एक प्रकार से उनके नेत्र खुले तो हैं लेकिन वो बिल्कुल पलक नहीं झपकते हैं, कहते हैं हाँ। इसको कहा जाता है महाराज पूर्णतया, जिसको आप समा निर्मिशेष नेत्र जिनको कहा जाता है, निर्मिशेष नेत्रों से बिना पलक झपकाए एक टक भगवान को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं महाराज। और उसके बाद कानों से बिल्कुल भी वो मुरली की धुन को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसा जो मोहिनी स्वरूप है भगवान की, त्रिभुवन मोहिनी मुरली जिसको कहा जाता, कहते हैं प्यारी सखी ये जो त्रिभुवन मोहिनी मुरली भगवान की बज रही है, ऐसा वो महाराज साधारण से दिखाई देने वाले खग यानी पक्षी जिनको हम लोग जड़ योनि कहते हैं, त्रियग योनि कहते हैं महाराज, ऐसी योनि में ये वास्तविकता में पक्षी तो हैं ही नहीं, ये हैं तो वास्तविकता में ऋषि और मुनि जिन्होंने हजारों वर्षों तपस्या करके भगवान के इस सौंदर्य स्वरूप को प्राप्त किया है। कहते हैं जरा सोचो, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि चलो इन महाराज जो है पशु पक्षियों की बात छोड़ दी जाए, जरा इन नदियों की तरफ देखो। अब उस मुरली का प्रभाव जरा उस नदी में देखिए महाराज, कौन कौन मुरली सुन रहा है। ये जो वेणु गीत है महाराज, आप कहते हैं ना वेदांत, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम, जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है वो सब परमेश्वरमय है, परमेश्वर से रहित कुछ भी नहीं, उसी का ये साक्षात स्वरूप है महाराज। वेणुगी जरा देखो, नद्यस्तदा ततुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्तलच्छित मनोभव भग्न वेगः आलिंगनस्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारे गृणहंति पादयुगलम कमलोपहारा। अरे सखी देखो तो जरा इस जड़ नदी को, जिसको हम लोग जड़ कहते हैं, जो बहने वाला जल है महाराज, साधारण सा अपने साधारण वेग से बहने वाला जल है, लेकिन महाराज जब ये भी मुरली सुनती है भगवान की, जिसके तट पे खड़े होके मुरली मनोहर जो है अपनी मुरली की तान को छेड़ते हैं, तो महाराज इन नदियों के अंदर भी भंवर बनने लगते हैं। क्या बन जाते हैं? हाँ, भंवर कहते हैं ना, छोटे छोटे आवर्त, आवर्त लक्षितो कहते हैं, ये अपने मन के भाव को आवर्त प्रकट करके, वो जो गोल गोल भंवर बनती है ना, उसको प्रकट करके महाराज ये दिखाना चाहती हैं कि हम भी आपकी मुरली की तान पर क्या कर रहे हैं, मुग्ध हैं और नृत्य कर रहे हैं। वो अपने हृदय को प्रदर्शित करती हैं, किसके द्वारा? भंवर के द्वारा। और धीरे 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 महाराज वो भगवान को उस भंवर में क्या कर लेना चाहती, समेट लेना चाहती महाराज, आलिंगन कर लेना चाहती हैं, भगवान को अपनी लहरों में समेट लेना चाहती हैं। और जो कहते हैं जो है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है जरा देखो उनकी तीव्र आकांक्षाओं का कैसे पता चलता है इन भंवरों के द्वारा। और दूसरी तरफ वो क्या करती हैं, अपनी नदी में बहाकर सुंदर सुंदर कमलों को लाती हैं और भगवान के चरणों में क्या कर देती हैं, लहरें जो है भगवान के चरणों में उन कमलों को अर्पित करती हैं, और लहरें जो है भगवान के चरणों को क्या कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, आलिंगन कर लेती हैं। कहते हैं इस प्रकार से ये नदियां भी पूर्णतया महाराज भगवान को क्या किए हुए हैं, अपने में। जिस समय भगवान मुरली मनोहर अपनी मुरली की तान को छेड़ते हैं महाराज, वो भी बेशुद्ध होकर, नदियां भी अपने वेग को भूलकर महाराज भगवान की हो जाती हैं, और उनके चरणों में कमल चढ़ाकर अपनी लहरों से भगवान के चरणों को आलिंगनबद्ध कर लेती हैं महाराज। ये नदी की स्थिति है, उस जल नदी के अंदर भी मनुष्य का सा स्वभाव आ जाता है। ये भगवान मुरली मनोहर की मुरली की क्या है, विशेषता है। तो अभी इसका जो है अंतिम थोड़ा सा भाग रह गया, इसको कल पूरा करेंगे, क्योंकि समय जो है वो समाप्त हो गया। यद्यपि मन तो नहीं कर रहा छोड़ने का बीच में, लेकिन समस्या बड़ी गंभीर है महाराज, आपके पास समय का अभाव है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।